जो लोग, तो हम ये समझते थे कि इस वक्त जितनी इंडिया से कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से उनका इन बड़ी पोजीशंस के ऊपर इख्तियार है, तो हम ये ख्याल करते थे कि दे आर टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स, बट नाउ थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। हाउ? इस वक्त तो मुझे सिर्फ इतना लगता है कि एनीबॉडी जो अमेरिकन है या इन अमेरिका जो इनकी पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं करता, वह उसको निकाल लेंगे, चाहे वो CIA है, चाहे वो आपका कोई और इदारा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है।
देखिए, सो पहले हम जरा वो इमिग्रेंट की बात खत्म कर लें। देखिए, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। मैं ये समझता हूं कि कैनेडा हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर अमेरिका अब डिनाय कर रहा है इमिग्रेंट्स को, H-1B वीजा वालों को जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं, तो कैनेडा शुड ओपन इट्स आर्म्स टू देम। अब कैनेडा में कुछ मसाइल हैं जो आप भी अच्छी तरह समझती हैं और मैं भी, एंड एज अ कम्युनिटी आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन देम एंड टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टू फिक्स दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, अमरीका से अपने आप को हटाना कैनेडा के लिए अशद जरूरी है। ये एक तो ये कश्ती डूबेगी और ये हमें भी लेकर डूबेगी। सो वी मस्ट गो इंटरनेशनल। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कर भी रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से डील्स कर रहे हैं, बाकी ममालिक से, और हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है। अब अगर हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है तो कैनेडा ने, तो हमें अपनी एफिशिएंसीज बढ़ानी होंगी। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि प्रोडक्शन में कैनेडा कोई बहुत एफिशिएंट मुल्क नहीं है। हमारे यहां एक मसला, और खास तौर पर इमिग्रेंट के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं कि कैनेडा इमिग्रेंट लेने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैनेडा इमिग्रेंट्स को असिमिलेट करने में कोई ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छा, इसमें इमिग्रेंट का इतना कसूर नहीं है, इसमें इमिग्रेंट का भी थोड़ा बहुत है, हम उस पर भी आते हैं, लेकिन कैनेडा का है। देखिए, आप अपनी तरफ से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी मंगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं। आप जो आज इन स्टूडेंट्स को गालियां दे रहे हैं कि यार इस मुल्क में इतने लाख स्टूडेंट्स, 1 मिलियन स्टूडेंट आ गया फलाना, और इन्होंने हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, कोविड में जब आपके पास पैसे नहीं थे, तो अगर आप 1 मिलियन स्टूडेंट मंगाया है, और 1 मिलियन स्टूडेंट अगर अपने साथ $20,000 भी लेके आया, तो उन्होंने कैनेडियन इकोनॉमी उठा के रखी है। आप जरा 1 मिलियन को $20,000 से मल्टीप्लाई करके तो देखें, और फिर जो वो आपकी लेबर मार्केट उन्होंने उठाई है। अब मसला ये है कि इतनी मैन पावर तो आप इस मुल्क में ले रहे हैं, क्या आप उस मैन पावर को किसी ढंग के इस्तेमाल में नहीं डाल सकते, अपनी एफिशिएंसीज नहीं बढ़ा सकते? सो एक तो एज एन इमिग्रेंट कम्युनिटी आई थिंक वी मस्ट आइडेंटिफाई, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन विद लाइक माइंडेड पीपल ऑन दिस, कि वी शुड आइडेंटिफाई कि हु इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया इन टू कैनेडा, वट काइंड ऑफ स्किल सेट दे आर ब्रिंगिंग विद देम, एंड वट काइंड ऑफ मनी दे आर ब्रिंगिंग विद देम ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। देन वी सिट डाउन विद द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड ट्राई टू पुट दैट स्किल सेट इनटू इफेक्टिव चैनल्स। इस वक्त होता यह है कि आप बड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो मंगा लेते हैं, लेकिन आप उसको नौकरी देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप ये चाहते हैं, एक तो ईगो है कि जी हम ये कैनेडियंस ये समझते हैं कि यार जो बंदा वहां से आया ना, वो ये बिल्कुल जाहिल आदमी है और इसको कख नहीं पता, और अगर वो आपको कुछ बताने की कोशिश करता है तो आप एक तरह उसको शन करते हैं। दूसरा मसला यह है कि क्योंकि ट्रेडिशनली ये सोसाइटी में पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो बैरियर्स टू एंट्री टू ट्रेड बहुत ज्यादा हैं। अब आपके यहां डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन आप उनको डॉक्टर बनने नहीं देंगे, आप चाहते हैं तू जाके बर्गर से फ्लिप कर। आपके यहां जो बंदा आ रहा है, आपने बैरियर्स टू एंट्री इतने ज्यादा किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कीजिए, लेकिन आप उनको एग्जाम्स चैलेंज करने का तो मौका दें। सो या आप जो लोग पर्टिकुलर स्किल सेट लेके आ रहे हैं, उनमें एक अपने ट्रेनिंग के कोर्सेज यहां पे शुरू कीजिए, जिनकी कैनेडा को जरूरत है इन द फ्यूचर। कैनेडा में इमिग्रेंट इज अ रियलिटी, लेट्स ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दिस एनर्जी ऑफ द इमिग्रेंट, द मनी एंड द स्किल सेट दैट दे आर ब्रिंगिंग विद देम, लेट द गवर्नमेंट चैनलाइज इट, राइट, एंड लेट अस, इसमें दोनों का फायदा, एंड ये जो एक 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 जो विंड चल रही है एंटी इमिग्रेंट, ये विंड भी ठीक होगी ताकि लोगों को ये द इमिग्रेंट्स कमिंग टू कैनेडा दे शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी. अदरवाइज अगर कुछ अरसे में हम फ्रांस की तरह हो गए, क्योंकि और ये आपको भी अच्छी तरह पता है जो मैं कहता हूँ ना, हमारे भी तो बड़े गंद हैं, हमारे लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं वो देख के इंसान को शर्म आती है कि यार मतलब बंदे बनो जी क्या कर रहे हो ना. Your skin is your passport. It's your identity. So please take care of it. But it has to be that two-way process. And people, Canadians, both Indians and Pakistanis, we must work together to create such a structure that ke aane wale logon ko hum quickly assimilate bhi kare, and then they should be contributing to Canada rather than उस बात को जो फैलाने की कोशिश की जा रही है एंटी इमिग्रेंट को, ताकि वो डाइल्यूट हो और वो इमिग्रेंट कनेडियन को नजर आए कि भाई नहीं, ये इमिग्रेंट मेरा दुश्मन नहीं है, ये इमिग्रेंट तो मेरा दोस्त है, ये मेरी स्ट्रेंथ है.
सही, बहुत शुक्रिया जनाब आशर अजीम साहब. मगर मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कनाडा में अमेरिका जो है, अल्लाह करे कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जब गए हैं आज यूरोपियन यूनियन के पास, फ्रांस आज मौजूद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और जाहिर है वो नए मौके भी देखना चाहते हैं. रादर देन पुटिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, वी कैन एक्सपोर्ट टू सम अदर कंट्रीज. डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत माइंड किया इस बात को, और आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि 30 डेज के लिए टैरिफ्स को डिले कर दिया था, बट कल से वो ये कह रहे हैं कि I am going to implement 25% on steel and aluminium के ऊपर हम implement करने जा रहे हैं. तो अमेरिका ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसमें भी शिरकत नहीं करनी चाहिए. तो डू यू थिंक कि अमेरिका इज एलियनेटिंग इट सेल्फ, बिकॉज ग्रीनलैंड पे भी दावा बोल दिया, गजा के ऊपर भी हमने दावा बोल दिया, कैनेडा को भी एनेक्स करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिको का आज आपने सर ये आपने वीडियो देखी कि नहीं कि जहाज डोनाल्ड ट्रंप का जहाज जो है जब खलीज मैक्सिको के ऊपर से गुजरा. यानी अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन वर्ल्ड, हाउ कैन ही चेंज द फेट ऑफ दिस वर्ल्ड कि वो खलीज मैक्सिको नहीं है, दैट इज खलीज ऑफ अमेरिका. पनामा को आप चेंज कर लेंगे, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल?
देखें जो बुली होते हैं, आपने जिंदगी में बुलीज देखे होंगे, स्कूलों में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, वो जो बदमाश टाइप आदमी होता है ना, वो सबसे पहले आके तड़ियां लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर अगर कोई आप डर जाए उससे तो फिर तो सर वो बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाता है. ऐसे आदमी के साथ डील करने का तरीका वो है
जो तो कुत्ते के साथ कुत्ता हो जाओ.
हाँ जी, नहीं उसके साथ आप सीधी बोल भाई तूने क्या, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने कनाडा के साथ शुरू किया था. एंड मैं मुझे इतनी खुशी थी कि कनेडियंस ने जिस तरह रूलिंग पार्टी, जिस तरह अपोजिशन, जिस तरह प्रोविंसेस, जिस तरह आम आदमी, द वे इस टैरिफ के नतीजे में वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वो एक नेशनहुड का सबूत दिया. मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि काश पाकिस्तान में लोग इस तरह इकट्ठे होने की और एक नेशन होने का सबूत देते, जो उन्होंने वहां नहीं दिया. मुझे कनाडा में यकीनन बहुत खुशी हुई थी कि जी द वे द पीपल गॉट टुगेदर एंड दे सेड, एंड आई एम हैप्पी कि यूएस स्टार्टेड दिस विद कनाडा एंड कनाडा सेट अ पेस फॉर थिंग्स कि भाईजान ये रबिश हम नहीं होगी. अल्टीमेटली ऑब्वियसली कनाडा विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन इट्स ओन डिफेंस, बिकॉज आखिर में इट रियली कम्स डाउन टू योर डिफेंस, आपके हाथ में डंडा है कि नहीं.
बहुत
तो और उसी आदमी को पैसे देना जो आपको थ्रेटन कर रहा है, मतलब ये कहना कि जी हमें 5% नेटो को देना चाहिए, तो भाई आपको तो खतरा ही सिर्फ नेटो ही से तो अब हो रहा है, मतलब नेटो का ही जो मामा लगता है वही तो आपको आपको थ्रेटन कर रहा है, तो अब आपको तो कुछ अपना ही करना पड़ेगा. उस पर मैंने वो किया भी है, और वो जाहिर फिर जाहिर कनाडा का स्किल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हम यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाली दुनिया के टॉप का मुल्क भी है, तो हम अपना बंदोबस्त कर सकते हैं
इंशाल्लाह. बड़ी हैरत की बात है सर, कनाडा व्हाट अ सिविलाइज्ड नेशन, और दुनिया में बहुत जगहों पे लोगों के दूसरे मुल्कों के झंडे जलाए जाते थे, अमेरिका के एंथम को बू किया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, मगर कनाडा ने हमेशा अमेरिका को अपना भाई समझा, बड़ा भाई समझा, बट द वे कनाडा इज स्टैप्ड, मेरा ख्याल है कि पीपल विल नॉट फॉरगेट इट सो इजीली, इज दैट राइट? और ये भी जो जितने स्कॉलर्स हैं या बड़े लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ को एज ए धमकी इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस टैरिफ इज गोइंग टू मेक अमेरिकन्स लाइफ मिजरेबल.
यस, देखिए मेरी और हमने मेरी बेगम ने कहा कि कतरा कतरा दरिया बनता है. हम तो ये टैरिफ आए या ना आए, हमने तो सिंपली कोई अमरीकी प्रोडक्ट अब जाके देखते हैं स्टोर में जिस पे मेड इन यूएस लिखा होता, नहीं लेनी,
नहीं लेनी, नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी.
ठीक है, सो एंड दिस इज नॉट ओनली मी, दिस इज
मैंने भी ये सोचा, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे अल्टीमेटली अपनी बिल्ली का खाना लेने के लिए आई हैड टू गो टू वॉलमार्ट, नीले स्टोर पे मुझे जाना पड़ गया, और मैंने अपने आप को इतना भू किया, इतना कर्ज किया कि फिटे मुंह तेरा कि भाई तू क्यों जा घुसी अमेरिकन स्टोर के ऊपर. और मैं देख रही थी कि वो भरे, मैं आई डिड नॉट गो बाय कॉफी एट ऑल, नो आई डिड नॉट, और आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्टैंड अप, दिस इज आवर कैनेडा, एंड सपोर्ट रोना, सपोर्ट टाइगर ज्वाइंट, और कौन कौन से कनेडियन स्टोर्स को सपोर्ट करें.
और फिर अगर आप वॉलमार्ट में भी चली जाती हैं किसी वजह से, तो वॉलमार्ट में भी हर प्रोडक्ट के ऊपर वॉलमार्ट कुछ कनेडियन प्रोडक्ट्स भी कैरी कर रहा होगा, बाय दोस.
अच्छा बाप रे, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मैं जरा डफर हूं ना. ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू फॉर योर टाइम.
बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, सुनिएगा. और ऑफ कोर्स लिविंग इन कनाडा, लिविंग अब्रॉड नाउ, तो कैन अमेरिकन्स ने ज्यादा प्राइस पे करनी है. लेट्स सी व्हाट हैपन, वी होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस यूनिवर्स. अशर अजीम साहब सर, थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी, अपनी जगह से उठिएगा. अगर पाकिस्तान की बात भी करते हैं तो आज अशर अजीम की दो बातों से मुझे ऐसे लगा ना कि वो एक इमारत के ऊपर से एक आदमी जा रहा था, तो उसने कहा कि यहां तो मैं जूती का कारोबार करने आया हूं, तो सारे नंगे पैर फिर रहे हैं. तो दूसरे बंदे ने कहा नो, इसका मतलब है मैं जूतियां ज्यादा बेच सकता हूं, लुक एट द पॉजिटिव साइड. इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया सर आपका. एवरी मंडे को आपकी मुलाकात कराती हूं जनाब अशर अजीम से. पाकिस्तान के खूबसूरत दिमाग है, और आज के भी प्रोग्राम में वो कहते हैं ना, अपना दिल का दर्द जाग जाना. उन्होंने कहा कि जब डिफिकल्ट टाइम हो तो व्हाई वी पाकिस्तानीज कैन नॉट स्टैंड अप टुगेदर, व्हाई वी कैंट होल्ड ईच अदर्स हैंड. इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी. आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज.
यू आर लिसनिंग टू WTUR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है, और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा. सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com. QTL, बिकॉज़ वी केयर.
Truck you! Brampton has a population of over 800,000, but it only has one hospital. The Ontario Liberals created this mess, and under the Conservatives, it's only gotten worse. 3 years ago, Doug Ford promised shovels in the ground. 3 years later, nothing has been done. Doug Ford couldn't get it done, but Merritt Stiles and the Ontario NDP will. My name is Martin Singh, the Ontario NDP candidate in Brampton East. We will invest in healthcare and ensure Brampton has two hospitals.
Authorized by the CFO for the Martin Singh campaign.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो मैं सुन रहे हैं 770 एम डायरेक्टर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। और जनाब अब सेगमेंट आ गया, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं जनाब, कभी कभी हो जाता है। न्यूज जो है बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है और शाज़िया मलिक साहबा जो है स्टूडियो में आ गई, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। लेकिन 5:45 के बाद आपने जो है वो अगर खबरें सुननी है और हमारा सेगमेंट सुनना है तो 6478724900 डायल करके आप सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com और हमारा ई आवाज टीवी तमाम ही IPTV बॉक्सेस पर मौजूद है। चले जनाब टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए खुश आमदीद कहते हैं शाज़िया जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूं।
वैसे ही हो?
अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर आज सोख बना रही हो, काले कपड़े पहन के?
बस अब दिन आ गए सोख के।
हाय 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 हाय, रोती रही हूँ क्या? करवटे बदलते रहे सारी रात, आंखें क्यों लाल हुई हुई है?
वो इन्फेक्शन मुझे लग रहा है दोबारा हो गया, लाइट चुभ रही है और मुझे पानी आंखों में से आ रहा है, तो मुझे तकलीफ बहुत हो रही है आंखों में से।
ये जिस दिन से तुम चाइना से होके आए हो ना, तुमने ऐसा वहां पे आंखें लगा ली है अपनी चाइनी लड़कियों के साथ कि तुम्हारी आंखें ठीक ही नहीं हुई है। अखियां जुराए तूने कैसा किया जादू है? चीनी लड़की किसने कोई जादू कर दिया?
ऐसे भी लग रहा है मुझे हालात।
क्योंकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक नहीं है। आंखें मारनी बंद करो ना लोगों को, तुम तो देख लो इन्होंने तुम्हारा क्या हाल किया।
मुझे टाइम का मुकाबला सकता है?
हाँ जी बिल्कुल,
खबरें सुना दे।
बहुत ही कम टाइम तो बहुत ही अब कम रह गया, यानी तुम्हारा मेरा नहीं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय आमिर साहब का दोस्त राजा बादशाह है जी। तो आप भी 1775 डॉलर्स बचा सकते हैं अगर आप उनके पास जाएं और होम और ऑटो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। ऑल स्टेट के साथ हैं, बड़ी जबरदस्त सुविधाएं देते हैं। जाएं सही, कॉल जरूर करें आप उनको, ठीक है? फिर आपको बहुत सारे वो जो है अच्छे पैकेजेस देंगे। और जनाब अच्छा एक बात मैं, अच्छा पहले मैं हेड्स बता दूं फिर मैं आपको बड़ी फनी बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ वीकेंड पे। अच्छा जनाब, एंड जो फैसल चटा साहब है उनके रेस्टोरेंट पे जाएं जनाब, विलेज टेस्ट, बहुत जबरदस्त उनके खाने होते हैं क्योंकि ऑथेंटिक जो है कुक्स लेकर आए हुए हैं वो। एक तो जो है मिसिसागा में है उनका रेस्टोरेंट और दूसरा जो है ओकविल में है, तो दोनों रेस्टोरेंट बड़े जबरदस्त हैं, वहां पे जाएं। एंड जनाब अगर ना फटने वाले कपड़े आपको चाहिए तो आप स्पेयर एंड मके पे जाएं, बहुत जबरदस्त उनके पास इटालियन वूल के कपड़े हैं। अभी ब्रिटानिया रोड पे उनका नया आउटलेट आ गया है तो बहुत अच्छी आपको वो देंगे जो है वो डिस्काउंट्स भी, और बहुत कुछ वहां पे उनके पास चल रहा है, नई बहुत सारी कलेक्शन आ गई है तो आप उनके पास जा सकते हैं। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर एक पता नहीं किस दिल जले ने फोन किया और उन्होंने कहा शाज़िया जी आपकी आवाज दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे नादानों, मेरी आवाज ऐसे ही है, पहले दिन से ऐसी ही है, फटी हुई है, फटे हुए ढोल जैसी है। अभी क्या करेंगे, अभी तो बूढ़े हो गए, अभी इनको कैसे ठीक करेंगे, है ना? तो आपने शायद पहली बार सुना है मेरी आवाज, तो इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा दुख लगा है, तो प्लीज ये दुख को आप जरा थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, ठीक है? ऐसे अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि ट्रंप साहब अभी आज किसी भी वक्त और थोड़ी देर में, क्योंकि उन्होंने वीकेंड पे ये बात कह दी है कि मैं फिर से जो है 25% जो टैरिफ्स है वो जो इम्पोर्ट्स हैं स्टील और एल्यूमिनियम की उसके ऊपर कनाडा और मेक्सिको पे और वाइडर ईयू जो है उसके ऊपर भी लगा सकता हूं। ईयू कमीशन जो है, यानी कि यूरोपियन कमीशन जो है, ये कि जो ईयू का एग्जीक्यूटिव آرم ہے جس نے کہ بہت کریٹیسائز کیا ہے اس چیز کو, اور اس نے کہا جی کہ یہ جو ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس سے صرف ای یو کے بزنسز ہی جو ہیں وہ نہیں کریں گے بلکہ یہ ٹیرفز جو ہیں یہ یو ایس کو بھی بہت زیادہ خراب کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری جو ہے بہت ہی ڈیپلی انٹیگریٹڈ ٹرانس اٹلانٹک جو ہے پروڈکشن چینز ہیں, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو اس سے جو بزنس اور فیول جو ہے اس کے انفلیشن زیادہ ہو جائیں گے اور ٹیکسز سب کے لیے بڑھیں گے. یو ایس اسٹیل کا جو شیئر ہے اٹ ہٹ $40 ان پری مارکیٹ ٹریڈنگ اپ نیئرلی 8.2% جب یہ ٹرمپ صاحب کا یہ میسج آیا, اور میجر اسٹاک فیوچرز جو تھے انڈیکسز جو ہیں وہ بھی رائز کیے ہیں. لیکن اس کے اوپر آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھنی البنیز جو ہیں انہوں نے کل پارلیمنٹ کو اسے بات کرتے ہوئے, بلکہ آج صبح بھی ان کی بات جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایک فون کال کروں گا ٹرمپ صاحب کو اور ان کو بولوں گا کہ ایسا نہ کرو. لیکن جو کینیڈا ہے اور میکسیکو بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اگر یہ اسٹیل اور ایلومینیم پہ لگے 25% ٹیکسز تو یہ پھر بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ خرابی ظاہر آئے گی. ایک نینوز ریسرچ کا جو ہے وہ آیا ہے نیا سروے, اس میں ڈک فورڈ صاحب جو تھے لیڈ کر رہے تھے اور ابھی بھی سیکنڈ پلیس پہ تو ویسے لبرلز ہی ہیں, لیکن پھر بھی یہ جو بڑھوتی تھی یہ اب تھوڑا شرنک کر گئی ہے اور جو ہے اب جو ہے ان کے بیچ میں جو پہلے 16 پوائنٹ کا ایڈوانٹیج تھا وہ اب 13 پوائنٹس پہ آ گیا. پی سی پھر بھی ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں 46% سپورٹ فرام ڈیسائیڈڈ ووٹرز, لبرلز 31%, این ڈی پی 19%, گرینز 4%, امانگ ڈیسائیڈڈ اینڈ انڈیسائیڈڈ ووٹرز 39.7% ابھی بھی بولتے ہیں کہ ہم پی سی کو سپورٹ کریں گے, 28% لبرلز, 17.1% این ڈی پی, 3.6% گرین, 2.2% ادرز اینڈ 9.4% جو ہے وہ شور نہیں ہے. ہم آپ کو پچھلے ایک مہینے سے جب سے اناؤنس کیا نا ٹرمپ اس نے ڈکس فورڈ صاحب نے کہ یہ الیکشن آنے والے ہیں, سنیپ الیکشن اناؤنس کیا, میں نے آپ کو تبھی سے کہا ہے کہ ڈک فورڈ صاحب نے ہی جیتنا ہے تو اس لیے یہ آنکڑے آتے رہے, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو جو ہے وہ ان کی ہی لیڈ ہے اور انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے اور لبرلز کو دیکھا ہے ان لوگوں نے انڈر کیپٹن وین بھی, اور ظاہر ہے کہ بونی کرومی کا بھی کچھ اتنا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ بینک کر رہے ہیں. این ڈی پی کے جو میرٹ سٹائلز ہیں جی, انہوں نے کہا جی کہ اگر ان کا گورنمنٹ آیا تو وہ نرس ٹو پیشنٹ ریشو جو ہے اس کو بہت بڑھا دیں گے, اور جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نرسز جو ہیں وہ برن آؤٹ نہ ہوئیں. انہوں نے کہا جی کہ این ڈی پی ہائر کرے گی 15,000 نرسز ان نیکسٹ 3 ایئرس ایٹ اے کاسٹ آف $1.5 بلین, اور یہ جو ملینز جو ہیں یہ جو جا رہے ہیں فار پروفٹ ٹیمپرری ہیلتھ کیئر اسٹافنگ ایجنسی میں, اس کو سب کو ری ڈائریکٹ کیا جائے گا پبلک سسٹم میں. آج بونی کرومی جو تھے وہ بھی فوکس کر رہے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر. جو ڈک فورڈ صاحب ہیں وہ اوکفل میں تھے, اس میں انہوں نے کچھ ورکرز کے لیے اناؤنسمنٹس کیے ہیں, اس کے بعد ورکرز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ایٹ انٹرنیشنل یونین آف آپریٹنگ انجینئرز لوکل 793, اور اس کے بعد جو ہے ان چاروں ہی لیڈر سے کچھ وقفے سے پوچھا گیا کہ اگر ٹرمپ صاحب نے یہ جو 25% ٹیرف پھر سے لگائے اسٹیل اور ایلومینیم امپورٹس کے اوپر تو آپ کیا کریں گے, تو چاروں ہی لیڈرز نے کہا کہ وی ول اسٹینڈ ود کینیڈا اینڈ اٹ ورکرز. تو ایک چیز کے اوپر تو سارے جو ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. کینیڈا کا جو ایڈ سیکٹر ہے اس نے اب آٹوا کو کہا ہے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ جو گیپس آ جائیں گے بہت زیادہ, کیونکہ واشنگٹن جو ہے وہ وائنڈ ڈاؤن کر رہا ہے یو ایس ایڈ اور ہمارے بہت سارے پروجیکٹس لمبو میں چلے جائیں گے, تو آپ کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. ایک ایڈ کوالیشن آف کوآپریٹو کینیڈا, کوآپریشن آف کینیڈا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملینز جو ہیں وہ جابس کٹ کر دی جائیں گے, پروجیکٹس کٹ کر دیے جائیں گے جو کہ ریلیٹڈ تھے لائف سیونگ سپلائز کے ساتھ. ابھی تو 90 کا فریز ہے لیکن اگر یہ جس وقت ختم ہوا تو پھر اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ جانا پڑے گا چھٹی کے اوپر, اور تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ریویو جو ہے اس کا امریکن کورٹس بھی کر رہے ہیں, یہ جو اس نے اناؤنس کیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ میں یہ ایسے لگاؤں یو ایس ایڈ کو میں بند کر رہا ہوں, اور بہت سارے ایسے رپورٹس بھی آئے تھے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ویورز آ بھی گئے ہیں تو بھی آپریٹنگ تو بھی یہ سسٹم آپریشنل رہیں گے. اس میں کانٹرڈکشنز اب آ گئے, انہوں نے کہا جی مارکو روبیو نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ہے. اراؤنڈ 450 ملین جو امریکنز ہیں ان فوڈ, جو امریکن فوڈ ہے اٹ از گرون بائی یو ایس فارمرز جو کہ فیڈ کرتا ہے 36 ملین لوگوں کو, اور یہ اگر نہ کیا گیا تو پھر یہ امریکن جو ہے ان کو بھی ہرٹ کرے گا امریکنز کو بھی. گلوبل افیئرز کینیڈا جو شو کر رہا ہے $40 ملین एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि अभी इन्होंने यूएस एड में किए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि ओटावा भी इसके अंदर फंड करता है, तो इमीडिएटली तो ये नहीं रुकेंगे। और ये इसमें इंक्लूडेड थे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इन पेरुवियन वाटरशेड्स एंड एलजीबीटी प्लस एक्टिविस्ट जो कि हु आर फ्लीइंग वायलेंस, उनके रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट के लिए ये सारे पैसे यूज होते थे। बहरहाल जी, यहां पे कनाडा में भी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये जो यूएस एड रोक दिया है तो उसके बड़े खराब जो है वो असर आएंगे। ट्रंप साहब ने कहा जी कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, अब सुनो जरा ये जी आमिर साहब, ये जरा बयान सुने ट्रंप साहब का। वो कहते हैं पैलेस्टीनियंस डोंट हैव द राइट टू रिटर्न टू गाजा। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, कैन यू इमेजिन। वो कहते हैं जी कि अंडर द यूएस प्लान ऑफ ओनरशिप, उन्होंने कहा जी कि अब ये तो ये बात कर देते हैं ना, फिर इनके बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं वो आके बात करते गए, नहीं नहीं ट्रंप साहब का मतलब है कि हम टेम्पररी रीलोकेशन कर रहे हैं और जिस वक्त ये बिल्ड हो जाएगा तो ये वापस हो जाएगा। ट्रंप साहब जो है वो क्लियरली कह रहे हैं, ये बातें उन्होंने उस वक्त की जब इनकी मुलाकातें जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू साहब के साथ हुई है। और उन्होंने कहा जी, आज तो उन्होंने बिल्कुल फिर से क्लियर जो है फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं, यूएस विल टेक कंट्रोल ऑफ गाजा एंड दे विल टर्न इट इनटू रिवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट। और उन्होंने बहुत अरसे से उन्होंने कहा जी कि मैं प्रेशराइज कर रहा हूं इनको, जॉर्डन और इजिप्ट को, कि ये पैलेस्टीनियंस को ले लें और हम जो है यहां पे गाजा में सेफ कम्युनिटीज बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए और भी कुछ हम और चीजें भी बना देंगे अवे फ्रॉम गाजा ताकि वहां पे डेंजर ना रहे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जी नतन्याहू साहब ने कहा जी कि अगर फिर से गाजा बस गया, फिर से हमास आ गया तो हमको फिर से प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन असल बात यह नहीं है। असल बात यह है जी कि ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ हैं जारेड कुश्नर, वो यहां पे एक बड़ी जबरदस्त रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना चाहते हैं और वो ये सारा इलाका देख के गए हैं बीच के पास, बहुत ही खूबसूरत, और उनको लगता है कि मल्टी मिलियंस जो है यहां से कमाए जा सकते हैं। अब इसके ऊपर आज न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि सारे ही अरब कंट्रीज ने इस प्रपोजल को बेइंतहा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल फीजिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसराइल जो है उसने अपनी, हालांकि सीज फायर हो गया है, फिर भी वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है पैलेस्टीनियंस पे। आज भी जो जनीन का जो रेफ्यूजी कैंप है उसके ऊपर इन्होंने जो है रेड्स किए हैं, वीकेंड के ऊपर भी ये करते रहे हैं इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, तो इसकी लड़ाई किसी सूरत नहीं रुक रही है। हमास का जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उसने फिर आज फाइनली कहा कि ये जो कैप्टिव्स आज हमने रिलीज करने थे उनका रिलीज हमने पोस्टपोन किया है क्योंकि इसराइल कॉन्स्टेंटली सीज फायर का वायलेशन दिखाता जा रहा है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं शिगेरू इशिबा, उनकी मुलाकातें जी ट्रंप साहब के साथ हुई हैं टोक्यो व्हाइट हाउस के अंदर। हालांकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जो है गर्मी पैदा हो गई, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ट्रंप साहब इनको भी काफी जो है वो दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जरा थोड़ा सा अच्छा मिजाज रखने की कोशिश की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम दोनों को चाइनीज अग्रेशन के साथ मिलके उसके अगेंस्ट काम करना है। ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं जैसे कि मैं जो है वो स्टील के ऊपर टैरिफ्स लगाऊंगा तो ये चीज जो है जापान को भी बहुत बुरे से वो करेगी। लेकिन भारत जिस वक्त इशिबा साहब मिलने के लिए ट्रंप साहब को जा रहे थे तो उनको बोला गया कि भई तुम्हारा जो पहला जो प्रेडिसेसर था, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था हमारा शिंजो एबे, जो कि बड़ा गोल्फ बडी भी था ट्रंप का, तो वो बड़ा प्लेजेंट और कूजी रहता था, तो तुमको भी वैसा ही बिहेव करना है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा बिहेव करने की कोशिश की है। हालांकि ट्रंप साहब ने कहा है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ इसको बिल्कुल जीरो के ऊपर ले आओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर जो है टैरिफ्स लगाऊंगा। तो चीजें तो गर्म थे, लेकिन इन्होंने बोला जी कि हमारा बड़ा अच्छा रैपो रहा और बड़े अच्छे से हमारे बातचीत हुई है। अभी क्या अच्छे से हुई है कुछ मालूम नहीं है। ट्रंप साहब जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं जी कि उनके जो एल आए हैं अब एलॉन मस्क साहब, वो फाइंड आउट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड एंड अब्यूज जो के पेंटागन पे होता था और उसके ऊपर एलॉन मस्क साहब का काम लगाया है उन्होंने कि ये लीड करेंगे ऑडिट को और स्लैश करेंगे द साइज ऑफ यूएस फेडरल वर्कफोर्स। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पेंटागन का बजट है वो इस वक्त टच कर रहा है 1 ट्रिलियन US डॉलर्स पर ईयर। दिसंबर के अंदर बाइडेन साहब ने एक बिल साइन किया था जिसमें कि उन्होंने बोला था मैं 895 बिलियन US डॉलर्स जो है वो इनको दूंगा फॉर स्पेंडिंग इन द फिजिकल ईयर एंडिंग ऑन September 30th। उसके ऊपर ट्रंप साहब जो है बड़े गुस्से में है और उन्होंने अब जो मस्क साहब को बनाया है हेड ऑफ न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको के डॉज भी बोला जा रहा है, तो उसके अंदर अब अगर मस्क साहब बैठेंगे इसको देखने को, तो बहुत सारा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा कंप्यूटर सिस्टम्स में वो इनके पास रहेगा, और जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में भी इसको मालूम रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था पहले भी कि ये बहुत वेस्टफुल और इनएफिशिएंट तरीके से पेंटागन को ये लोग चला रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है एक कर्ब बिठाने की जरूरत है। लेकिन मस्क साहब के पास ये जो सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, क्या ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है इसका एक्सपोज होने का कुछ खतरा तो नहीं है, लेकिन ये सारे चीजों के लिए जो है कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, तो अभी कांग्रेस तो इनको अप्रूवल दे ही देगा जाहिर है ऑफकोर्स, क्योंकि इनका तो मेजोरिटी है, तो अभी लेकिन फिर भी इस पे काफी कंसर्न है लोगों का। लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं जी जोसेफ आउन, उन्होंने अब अनाउंस किया है कि 2 साल के बाद लेबनान के अंदर अब हम न्यू गवर्नमेंट जो है वो बिठा रहे हैं आफ्टर द इंटरिम कैबिनेट, और ये पॉलिटिकल रैंगलिंग जो बहुत सारा चल रहा था उसके बीच में मुल्क में इकोनॉमिक कलैप्स था बिल्कुल कंप्लीटली, उन्होंने आज एक्सेप्ट किया रेजिग्नेशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट और अभी अपॉइंट किया पीएम नवाज सलाम के न्यू कैबिनेट को, और उनके 24 मेंबर्स रहेंगे। ये फुल फ्लैश गवर्नमेंट है आफ्टर 2022। सलाम जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो लेबनान का जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और उन्होंने मीडिया को बताया कि वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे यूएन का रेजोल्यूशन 1701, जिसमें के लड़ाई जो था वो एंड हुआ था विद हिज़्बुल्लाह एंड इसराइल जिसके अंडर इन 2006, और उन्होंने कहा जी कि हिज़्बुल्लाह को ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा हिस्सा नहीं देंगे गवर्नमेंट के अंदर, और वो कहते हैं जी कि हिज़्बुल्लाह और नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स जो हैं उनको हम बोल रहे हैं कि वो विदड्रॉ करें, और कुछ इतना जोर उन्होंने अब हिज़्बुल्लाह का रहने भी नहीं दिया है। तो जनाब ये है, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही आफरीदी को बोला है कि भई आप लॉ के साथ खड़े रहे और जस्टिस के साथ भी। आज मीडिया के साथ बात कर रहे थे अडियाला जेल में, और उन्होंने कहा जी कि सारी नेशन जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। उन्होंने 2 लेटर्स भी लिखे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो डेमोक्रेटिक एवेन्यूज है इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय सीजेपी, जिसने कि अभी अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ 6 new judges टू सुप्रीम कोर्ट, जबकि पीटीआई जो है उसके लॉ मेकर्स ने ये बॉयकॉट किया था, जिसमें कि 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल थे। उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लास्ट किया कोलिशन गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट जरदारी, फेडरल मिनिस्टर्स को। उन्होंने कहा जी ये सब कुछ फेक चीजें हैं जो कि ये प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कोई भी पार्लियामेंट से तो हमको होप नहीं है क्योंकि ये तो अभी फंक्शनल ही नहीं है और पार्लियामेंट तो फ्रॉड है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जुडिशरी को कुछ अपना प्रॉपर जो है वो करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। 6 जजेस जो है प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के, उनको जी एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आफ्टर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका नॉमिनेशंस जो था उसको अप्रूव किया था टू फिल वेकेंट पोस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। और ये जो मीटिंग थी ये हो रही थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये नॉमिनेशन जो हाई कोर्ट के जजेस के हैं इनको आप कंसिडर करो। चीफ जस्टिसेज ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स एक्सेप्ट लाहौर हाई कोर्ट वर अमंग 6 जजेस, जिसमें के हैं जस्टिसेज मोहम्मद हाशिम खान काकड़, मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सलाउद्दीन पनवार, इश्तियाक इब्राहिम, शकील अहमद, आमिर फारूक, और जो है ये है पीडीआई के जो बैरिस्टर हैं गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर, और दूसरे जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह एंड मुनीब अख्तर, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था और इससे हट गए थे पीछे। गौर ने कहा कि जी ये जो मीटिंग है इसको पोस्टपोन करना चाहिए था क्योंकि अभी 26th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं आया है। अली जफर ने भी ऐसा ही कुछ बोला, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी जो है उसको बिल्कुल ये मीटिंग कॉल ऑफ करना चाहिए था। गौर ने फिर उसके बाद मीडिया से बात करके बोला कि जी पीटीआई जो है अब फाइल करेंगे पिटीशंस 26th अमेंडमेंट के खिलाफ विच इज स्टिल पेंडिंग, इसलिए पीटीआई ने चूज किया कि इस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो पहुंच गए हैं अभी अबू धाबी में फॉर 2-डे ऑफिशियल विजिट टू अटेंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये इनका सेकेंड विजिट है to UAE since assuming office in March 2024. और यहाँ पे ये मीटिंग करेंगे बहुत सारे एमराती हाई अप से, पाकिस्तानी और एमराती बिजनेसमैन से, और डिलीवर भी करेंगे अपना की नोट एड्रेस इन दुबई, ये जो है समिट इसमें कल ट्यूजडे को. उन्होंने जो है आज जब बात कर रहे थे इन सब लोगों के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान का विजन इनको बोला कि बहुत ही इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गवर्नेंस हम कर रहे हैं. और उन्होंने उनके साथ जो बहुत ही एक हाई लेवल डेलीगेशन था जिसमें कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार और दूसरे जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो इनके साथ थे. प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो भी लिस्बन में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कंडोलेंसेज ऑफर किए हैं प्रिंस रहीम अल हुसैनी जो कि बड़े बेटे थे प्रिंस करीम आगा खान के, उनके डेथ के लिए. और जरदारी साहब यहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने हार्ट फेल्ट सिंपथीज दिए फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कहा जी कि वो हमारे ट्रू फ्रेंड थे, हम उनका लॉस जो है बहुत ज्यादा अफसोस से देखते हैं, वो बहुत ही ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट थे. और प्रिंस करीम आगा खान जो थे 49th हेरिडिटरी इमाम ऑफ इस्माइलीज थे, उनका डेथ कुछ दिन पहले पोर्चुगल में एट द एज ऑफ 88 हुआ था. और फिर अब उनको जो है वो बैरी किया गया है इजिप्ट के इस्वान सिटी के अंदर. इससे पहले एक दिन जो सेरेमोनियल बरियल था वो हुआ था लिस्बन के अंदर भी. तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान वो अब पाकिस्तान को लेटर दिस वीक जो है वो विजिट कर सकते हैं. ऑन 3 डे एशिया टूर वो निकले हुए हैं और वो पहले मलेशिया जाएंगे और मलेशिया के में आज वो वैसे पहुंच गए हैं और फिर उनका ये 4 डे टूर है ऑल टुगेदर. उसके बाद फिर ये इंडोनेशिया जाएंगे और जो बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ उनका टूर रहेगा उसमें वो पाकिस्तान जाएंगे. इसमें वो सारे इन के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे और कोऑपरेशन देखेंगे वेरियस फील्ड्स में. इसके अलावा पैलेस्टाइन इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिचुएशन इन सीरिया है, रशियन यूक्रेन वॉर है, उसके ऊपर भी ये सब लोग इसके ऊपर बात करेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने आज फिर से बोला है कि एक वेसल जो कि कैरी कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स को इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जो माइग्रेंट्स हैं, इट कैप्साइज्ड इन लीबिया. और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं. फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इस वेसल के अंदर 65 पैसेंजर्स थे और ये कैप्साइज किया नियर द पोर्ट ऑफ मार्सा डेला नॉर्थ वेस्ट ऑफ जाविया सिटी इन लीबिया. पाकिस्तान का जो एम्बेसी है ट्रिपली में उसने बोला है जी कि टीम जो है वो जाविया हॉस्पिटल के साथ असिस्ट कर रही है टू आइडेंटिफाई द डिसीज. मिनिस्ट्री का जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट किया गया है और लोगों को बोला है कि आप कॉन्टैक्ट करो एट 0519207887 हेल्पलाइन और रेलिवेंट ऑफिशियल्स इन ट्रिपली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 0305218582 व्हाट्सएप का ये है और 2+21893870577 सेल नंबर है और +21891642543 ये भी व्हाट्सएप का नंबर है. तो उनको बोला है कि आप इस पे कांटेक्ट करिए. हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी जो है वो उसने जनाब 27 इयर्स के बाद जो है पलटी खाई है दिल्ली में. दिल्ली के जो इलेक्शंस चल रहे थे उसमें वो जीते हैं और उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी को. 12 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल और उसका आम आदमी पार्टी आया था यहां पे पावर में 2013 में असेंबली इलेक्शन में ऑन द पॉपुलर एंटी करप्शन मूवमेंट, तो वो सारा कुछ जो है वो खत्म कर दिया. अरविंद केजरीवाल और उनके जो डिप्टी थे मनीष सिसोदिया उन्होंने अपनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लूज किया. आम आदमी पार्टी ने फिर अपना जो पार्टी का हेडक्वार्टर है सेंट्रल दिल्ली में उसको भी टेम्परेरली बंद कर दिया था वीकेंड पे ही जब उनके जो है पता चला उनको कि बीजेपी जो है वो जीत गई है. उनके सेलिब्रेशंस वहां पे चल रहे थे. 70-seat असेंबली में बीजेपी ने जीता है 48 seats. आपने जीता था 63 seats इन 2020 इलेक्शंस में और अभी सिर्फ 22 जीत सके हैं. कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई है. 33 मिलियन लोग जो है वो दिल्ली में रहते हैं और लेकिन अब वो परेशान है कि आम आदमी पार्टी का जो ये सारा इनिशिएटिव था फ्री वाटर फ्री इलेक्ट्रिसिटी और अदर सब्सिडीज वो क्या बीजेपी भी कंटिन्यू करेगा या नहीं. बीजेपी ने आज अर्ज किया है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वी के सक्सेना को कि वो मर्ज जो किया था प्रॉपर्टीज 4 जिसमें कि फिर शीश महल बनाया था सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पे जिसके जो रेजिडेंस था अरविंद केजरीवाल का, उसको आप जो है वो जो है इसको खत्म करें, ये मर्जर जो है यानी कि, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा करप्शन का एलिगेशन आ गया है। वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रेसिडेंट हैं बीजेपी दिल्ली के, उन्होंने कहा जी कि ये बे इंतहा बंगलों इन्होंने बढ़ा लिया था और चार प्रॉपर्टीज को मर्ज किया था, तो आप ये रिवर्स करो मर्जर और हम अब सोचेंगे बीजेपी के इसको फ्यूचर में कैसा यूज करना है। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल इस रेजिडेंस में नहीं रहेगा। इसको जब रेनोवेट किया गया था तो फिर ये सर्व कर रहा था केजरीवाल का ऑफिशियल रेजिडेंस एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 2015 अंटिल अक्टूबर 2024, जब इन्होंने रिजाइन करके इसको वैकेट किया था अमिड बीजेपी करप्शन एलिगेशंस। तो अभी बीजेपी कह रही है हम इसका देखेंगे कि हमको कैसा जो है वो इसको आगे चलाना है। अच्छा जनाब, हम ऐसा करते हैं कि हम जो है आपको हमारे पास अब एंटरटेनमेंट की और स्पोर्ट्स की खबरें रह गई हैं, तो वो फिर हम जो है आपको सुनाएंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि मगरिब के अजान का वक्त हो गया है, उसके बाद हम आएंगे और फिर हम आज आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी देंगे जो 6 बजे चलेगी और वो रहेगी जो सवाबी के अंदर पीटीआई का रैली हुआ है। तो जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद आएंगे हम आपको स्पोर्ट्स की और एंटरटेनमेंट की खबरें देंगे और फिर हम अपने जो है वो जाएंगे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अब मगरिब की नमाज की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं।
काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, उनकी चश्मे करुण की अदा है, उनकी चश्मे करुण की अदा है, मेरे सीने में उनकी जिया है, मेरे सीने में उनकी जिया है, याद सुल्तान तैबा के सदके, याद सुल्तान तैबा के सदके, मेरा सीना गम से नगीना, याद सुल्तान तैबा के सदके, मेरा सीना गम से नगीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे वोटों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, मिदहत मुस्तफा की बदौलत, मिदहत मुस्तफा की बदौलत, मिल गया है मुझे ये खजीना, मिदहत मुस्तफा की बदौलत, मिल गया है मुझे ये खजीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद
سامعین کرام، ٹورانٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی
جلا دے جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے میں ایسے کرم کی ہوا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM. ہمارے پروگرام کو ٹورانٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 647-872-4900, مونٹریال 514-907-6288. اس کے علاوہ کیلگری, وینکوور, ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com. لائک کریں فیس بک پیج eawaz, ڈاؤن لوڈ کریں فری eawaz آفیشیل ایپ. Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
ਪਾਈ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੈ ਲਾ। ਓਹੋ ਸੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ, ਫਰੂਟਸ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ।
Hello, ji. Welcome back. And this part of the program is being brought to you by Brampton TV and Appliances. Sultan bhai hote hain, zabardast kism ki aapko jo hain bundle deals dete hain. 801 Bouvet Drive West pe hain. Aap unke paas jaye aur unke paas bahut achhi deals jo hai. Iske alawa janab, dentistry on Ridgeway, ab jo naya unka dentist office aa gaya hai Dr. Nazia Rehman ka, uske paas aap jaye, aapko bahut zabardast wo services dete hain. Aur Adnan Alvi saab Lifetime Group ke president hain, wo bhi kehte hain main aapko bahut achhe insurance RESP RRSP deta hu. Aap unke paas jaye aur aap unse sote rahe. اچھا جناب, جسٹن ویور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جیسے کہ شاید انہوں نے اپنے جو وائف ہے ہیلی بیئر ویور, اس کو جو ہے شاید ڈیورس دے دیا ہے, لیکن پھر ابھی ان کا ایک پکچرز بہت سارے آئے ہیں جو ڈنر یہ لوگ کر رہے تھے ساتھ میں, اور بہت ہی کوزی قسم کے پکچرز ہیں اس کے اندر, دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں کہ یہ لوگ ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں بہت سارے. اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے ایسے بھی کچھ پکچرز ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جسٹن ویور جو اپنے نیو میوزک کا جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اس کے بھی کچھ گلمسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. فلم میکر انوبھو سنہا جو ہیں انہوں نے بہت بڑے ریولیشنز کیے. آپ کو پتا ہی ہے نا, بہت زبردست فلمیں بناتے ہیں, ملک, آرٹیکل 15, تھپڑ, انیک, تو انہوں نے را ون کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ تھے. وہ کہتے ہیں جی, اس کا پہلے آئیڈیا مجھے کنسیو ہوا 2005 میں, اور جب یہ میں لکھ رہا تھا تو شاہ رخ خان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, اور ابھی کچھ بھی فارمل نہیں تھا, لیکن بلڈنگ کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی اور شاہ رخ خان نے اس پروجیکٹ کو اناؤنس کر دیا. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں صحیح سے نہیں چلیں تو میں اس سے پھر الگ ہونا چاہتا تھا, शाहरुख खान और रावण के आसपास जो है बहुत सारा नेगेटिव प्रेस आने लगा और मैं जो है बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील करने लगा। हालांकि जो प्रोड्यूसर थे किशोर लुल्ला, उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लोगे, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम लोग काम करो। लेकिन वो कहते हैं जी कि मुझे सेंस हो गई थी, मैं देख रहा था कि लोग चाहते हैं कि शाहरुख खान और उसकी ये फिल्म जो है ये फेल करे। तो लोग ऐसे भी हैं जी जो टांगे खींचने को हर वक्त तैयार, हर जगह बैठे होते हैं। जुनैद खान जो कि आमिर खान के बेटे हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है जी कि उनको जो था जब छोटे थे तो डायग्नोज किया गया था डिसलेक्सिया, और उसके साथ आमिर खान और उनकी जो मां थी रीना दत्ता उस वक्त बहुत ज्यादा इसके साथ स्ट्रगल करते थे। तो ये इंटरव्यू के बीच में हंसने लगे, वो कहते हैं जी मुझे लगता है कि तारे जमीन पर जो मेरे वालिद साहब ने बनाया है वो सारा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ उन्होंने किया, जो डायग्नोज मुझे किया गया और जिस तरह से मैं बिहेव करता था, तो उससे शायद इंस्पायर होके इन्होंने ये बड़ी अपनी मशहूर आइकॉनिक मूवी 2007 की तारे जमीन पर बनाई होगी। और जनाब न्यूजीलैंड ने तो तबाहियां फेर दी हैं, तबाहियां। जो ट्राई सीरीज शुरू हुई है, हम पहले आज का आपको मैच बता दें कि आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा स्कोर किया था 305, लेकिन इन्होंने चेज किया इसको बड़ा सक्सेसफुली, 6 विकेट्स जो थे उससे ये लोग जीते हैं। और केन विलियम्स हमने 100 बनाए जी अपने सेकेंड मैच ऑफ ट्राई सीरीज, ये जो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा था। न्यूजीलैंड ने जो है इस टारगेट को 4 विकेट्स के लॉस के ऊपर जो है वो अटेन कर लिया एंड 8 बॉल्स टू स्पेयर। ये जो सेकंड विकेट का पार्टनरशिप था विलियम और डेविन कॉनवे के बीच में, ये बहुत जबरदस्त चला जिसकी वजह से ये अपना हासिल कर सके। इसके साथ साथ जनाब जो पहला मैच हुआ था ट्रायल सीरीज का जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया 78 रन से। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में यह हो रहा था और पाकिस्तान चेज कर रहा था 331 रन का टारगेट, लेकिन सिर्फ 254 ही बना सका और पाकिस्तान टीम वाज बोल्ड आउट एट 47.5 ओवर्स। फखर जमान ने हालांकि 50 बनाए थे लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के सामने नहीं ठहर सके। मिशेल स्टैटनर और सेंटनर और मैट हेनरी जो है उन्होंने 3-3 विकेट लिए, ब्रेसवेल ने 2 लिए और इन्होंने पहले बैट करने के लिए ऑप्ट किया था, इन्होंने 30 for 6 बनाया था इन 50 ओवर्स। न्यूजीलैंड जो था उसने फिर जो है हालांकि उसके जो शुरू की जो इनिंग वो खेल रहे थे बहुत ही खराब थी, देवर रिड्यूस टू 135 for 4 इन 27.1 ओवर्स, लेकिन मिशेल ने फिर 81 बनाए फॉर 84 बॉल्स और ग्लेन फिलिप्स ने फिर बनाए अनबीटन 106 for 74 डिलीवरीज जिनसे ये जीते। राइट आर्म क्विकी हमारा जो है हारिस रऊफ शायद वो मिस करेगा ट्रायल सीरीज ओडीआई का जो मैचेस हो रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ड्यू टू इंजरी। पीसीबी ने इसका अनाउंसमेंट किया है, रऊफ जो उसको इंजरी आया था जो लास्ट ये अभी खेल रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, जो अब होने वाला है दूसरा मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ 12 फरवरी को, वो शायद नहीं खेल सकेंगे। एमआरआई और एक्सरे के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो शो कर रहे हैं कि रऊफ का जो मसल स्प्रेन है वो लोअर चेस्ट वॉल रीजन के अंदर है और पीसीबी ने कहा है कि शायद ये नहीं आगे जा सकेगा। पीसीबी ने अनाउंस किया जी कि वो इंडक्ट करेगा लेजेंडरी क्रिकेट ग्रेट हनीफ मोहम्मद को इन हॉल ऑफ फेम ऑन वेंसडे और उसका जो बेटा है शुएब मोहम्मद उसको कमेमोरेटिव फ्लैग और कैप दिया जाएगा। हनीफ जो है वो अमंग इनिशियल इंडक्टीज थे जिनका कि अनाउंसमेंट किया था 2021 में, लेकिन फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी नहीं हो सका था तो अब वो मैनेजमेंट के चेंजेस और बहुत से जो मसले थे उसकी वजह से, तो अभी रीस्केड्यूलिंग के भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो इसलिए अभी वो कर रहे हैं। ये सेरेमनी जो है ये होएगी जब पाकिस्तान का जो कराची के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच होने वाला है उससे पहले। इसके साथ साथ इंडक्शंस होंगे सईद अनवर और मुश्ताक मोहम्मद के भी और ये किए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में क्योंकि अभी सारे प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान मेंस नेशनल फुटबॉल टीम जो है उसको ऑफिशियली एक्सक्लूड किया है फ्रॉम एएफसी एशियन कप सऊदी अरेबिया 2027 क्वालिफायर से क्योंकि फीफा ने सस्पेंड किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने बोला है कि नेशनल टीम अब नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने पहले ही बोला था पाकिस्तान को कि अगर आपका ये फीफा ने सस्पेंशन नहीं हटाया बाय मार्च 4 3 वीक्स बिफोर पाकिस्तान का पहला क्वालिफायर जो होने वाला था सीरिया से, तो आपको फिर कंसिडर किया जाएगा कि आपने विड्रॉ किया है। एएफसी ने अब कहा है कि आप अपना फौरन ये मसला हल करो ताकि आपको इसमें शामिल किया जा सके। ओडीआई जो हो रहा था जनाब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भारा भाई बाती स्टेडियम कैटक में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तूफान आया। इनको जो है इंडिया को 305 का टारगेट दिया गया था और इन्होंने अभी 48 ही बनाए थे 6.1 ओवर्स में कि बत्तियां चली गई इतने बड़े उसके अंदर और सारे का सारा फील्ड डार्कनेस में चला गया। 20 मिनट तक बत्तियां नहीं आई, फिर बाद में आई, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत स्लैम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है उसका इतना जो फ्लड लाइट्स बैड है। कुछ ने कहा कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त बोलते रहते हैं तो इट्स कर्मा। पाकिस्तान के सैयद अबू हुरेरा शाह जो है उसने विन किया है ब्रॉन्ज एट इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप इन फ्रांस। 2000 एथलीट्स ने 20 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट किया था और जो है इन्होंने उसमें ब्रॉन्ज जीता। शाह इससे पहले भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं मलेशिया, कतर, दुबई, थाईलैंड और जापान में। अभी 7th एशियन टाइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप 2025 होने वाला है फरवरी 14 से 20 में एट लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। और पाकिस्तान के जो साइक्लिस्ट है अली इलियास, उन्होंने भी गोल्ड जीता है जी एट मेंस मास्टर्स ओपन एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप पे थाईलैंड में, और उन्होंने अपना जो है टाइटल भी जो है वो डिफेंड किया। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज बिफोर वी गो टू द स्पेशल रिपोर्ट, लेला फर्नांडिस जो है उसने नंबर 8 सीड एमा नवारो को यूएस के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ कतर टोटल एनर्जीज ओपन के अंदर हराया है। तो ये है जी हमारी आज के रिपोर्ट सारे,
और स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बता रहे
हैं
अभी हम।
हाँ जी, स्पेशल रिपोर्ट जो है जनाब अब हम करने वाले हैं सवाबी का जो जलसा हुआ है उसके ऊपर सारी रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। पीछे वाले स्टूडियो में हम जाएंगे और आपको डिटेल्स देंगे कि कैसे वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत सक्सेसफुल हुआ, जाहिर है कि पीटीआई बोल रहा है, और जो अपोजिशन है वो बोल रहे हैं 5-6 हजार बंदे थे। तो आप खुद ही देखिए सोशल मीडिया पे 6 हजार बंदा था, मुझे तो बहुत सारे लगे। बहरहाल हम रिपोर्ट सुनाते हैं और उसके अंदर आपको कॉमेंट्स होंगे, स्पेशली सलमान अहमद जो कि जुनून के गिटार लीड गिटारिस्ट हैं। आइए देखते हैं
जनाब हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं।